अक्सर एक बहन है जो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए टेबल पर रखी हुई चीजों को हिलाती है, एक टेबल से दूसरी टेबल पर या टेबल पर घुमाना चाहे तो घुमाती है। पेपर वेट, वहां पैड रखा हो, पैड, कागज, पिन, उसको पता नहीं है उसकी ये क्या शक्ति है और ये कैसा बनता है। इसकी खोज हुई और बहुत साइंटिफिकली खोज हुई और नतीजा ये निकला कि उस बहन के व्यक्तित्व में ऐसी एक शक्ति है कि वो सारे अपने व्यक्तित्व की जितनी विल पावर है वो इकट्ठा कर सकती है, कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, और वो कॉन्सेंट्रेटेड विल पावर के आधार पर वो चीजों को हिला सकती है। एक कदम साइंटिस्टों ने आगे रखा और ये खोज चलाई कि क्या इस प्रकार की विल पावर हरेक को हासिल हो सकती है, और अगर हरेक को हासिल हो सकती है तो क्या पूरे नेशन को हासिल हो सकती है, और पूरे नेशन को अगर हासिल हो सकती हो किसी एक अवधि के बाद में, स्टेज में, तो क्या वो विल पावर छोटी चीजों के नहीं लेकिन बड़ी बड़ी कामों, बड़े बड़े कामों को भी करा पाएगी, क्या ये संभवनीय है? रशिया में और दूसरे साम्यवादी राष्ट्रों में इसकी खोज चल रही है। मैं सोचता रहा ये पढ़ने के बाद में कि क्या इस देश में भी कोई ऐसी विल पावर बन सकती है। क्षण भर के लिए पूरे देश की बात को थोड़ा आप किनारे रख दीजिए, लेकिन क्या यूथ में और स्टूडेंट्स में ऐसी कोई विल पावर बन सकती है? और अगर ये विल पावर बन सकती है तो फिर आगे के कदम आप चार्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको उठाने नहीं पड़ेंगे। शिक्षा में परिवर्तन हो इसके लिए इस देश में कितने अरसे से ये मांग होती आई है, परिवर्तन चाहिए। लेकिन क्या उस बहन के व्यक्तित्व में जिस प्रकार की एक विल पावर इकट्ठा होती है, ऐसी शिक्षा में परिवर्तन के लिए इस देश के समाज में विल पावर पैदा हुई है? जो शिक्षा ले रहे हैं उनमें ये विल पावर हो रही है? मैं सिर्फ दो ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस प्रकार की विल पावर अगर विद्यार्थी जगत में, तरुणों में, युवकों में पैदा हो सकती है तो शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए कुछ कदम युवकों को नहीं उठाने पड़ेंगे, जो उसके जानकार है वो उठा सकेंगे। अपने देश में नहीं लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों में युवकों के विल पावर से क्या होता है, इसके नमूने अभी अभी 10 साल के भीतर भीतर पेश हुए हैं। संसद के 22 मार्च को करीब 25 विद्यार्थियों ने पेरिस से 18 मील दूर की अत्यंत आधुनिक यूनिवर्सिटी का कब्जा ले लिया। वो 23वें माले तक चढ़े और जब चढ़ रहे थे तो हर माले का दरवाजा बंद कर लेते थे। सारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का उन्होंने कब्जा लिया और करीब करीब 7 दिन वो 23 व्यक्ति विद्यार्थी थे, कुछ भाई कुछ बहने, वहां रहे और फ्रांस के उस वक्त के सबसे ऊंचे दर्जे के जो तत्वज्ञ थे, फिलोसोफर, उन्होंने कहा कि उन 7 दिनों में इन 23 विद्यार्थियों ने जो लिखा है पूरे साल भर में फ्रांस के सब विचारकों ने नहीं लिखा। वॉल्यूम में नहीं, क्वांटिटी में नहीं, गहराई में, क्योंकि वो तो अपने जान से खेल रहे थे। कॉन्सेंट्रेटेड विल पावर से उन विद्यार्थियों ने जो लिखा वो फ्रांस जैसे राष्ट्र के विचारकों को विचार करने के लिए लगाने लायक लिखा। कोई ज्ञान से नहीं, ये विल पावर। इस प्रकार की विल पावर कैसे और कहां से पैदा होगी एक काम के लिए, सिर्फ काम कई है लेकिन शिक्षा में परिवर्तन के लिए ये विल पावर कहां से पैदा होगी। पीपल्स कमेटी का काम मैं भी करता हूं और राष्ट्रीय स्तर पर ये पीपल्स कमेटी का जयप्रकाश जी का विचार कैसे कार्यान्वित हो सोचते भी रहते हैं हम लोग। ऐसा दिखाई देता है कि एकाएक न तो स्ट्रगल होगा ना आपने अनुभव किया होगा और उन्होंने अनुभव किया है, एकाएक न तो एजिटेशन भी हो सकता है। और इस देश की हालत ऐसी हुई है कि बिना एजिटेशन के बिना स्ट्रगल के कोई समस्या हल होगी नहीं। वर्षों पहले की बात है जब मैं भी विद्यार्थी था तो एक कारपोरेशन का पहली पहल नागपुर शहर में जब फर्स्ट मेयर बना, पहला मेयर, तो उसके स्वागत समारोह में विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के नाते मुझे भी बोलना पड़ा था। बड़े बड़े शहर के विद्वान भी बोल रहे थे, थोड़ा संकोच भी मेरे मन में था कि मैं क्या बोलूंगा। वक्त से सूझा मुझे इतना ही, मैंने कहा कि ये मेयर साहब से एक ही प्रार्थना है कि इस नागपुर शहर में कोई मक्खी न रहे, ऐसा इंतजाम करें। अब हम लोग तो हंसते हैं, मक्खी मारना कोई काम है पराक्रम का, पुरुषार्थ का काम तो नहीं है। बाद में मैंने पढ़ा कि माओ का शासन आने के बाद में चीन में मक्खियों का निराकरण किया गया काफी बड़ी मात्रा में। फिर वो मेयर साहब ने मुझसे कहा कि जितनी बधाइयां दी गई वो तो सब मैंने स्वीकार की लेकिन तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार की। कहा मुझे तो लगा कि बहुत मामूली सी प्रार्थना मैंने की थी। कहा नहीं, अगर मक्खियां नागपुर शहर की हटानी हो तो नागपुर शहर के हर नागरिक की केवल लिविंग स्टाइल नहीं उसकी आदत को बदलना पड़ेगा। अब पूरे आबादी की आदत बदलना, और कितनी भिन्न भिन्न आदतें हैं, काफी मुश्किल काम है। उन्होंने कहा भी इसके लिए रेवोल्यूशन होगा तब होगा, यानी मक्खियां भी मारनी हो तो रेवोल्यूशन ही करना पड़ेगा और मुझे लगता है टोटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा वरना नहीं होगा। अब ये शिक्षा में क्रांति तो कई बड़ा विषय है, इसमें अगर आप परिवर्तन या क्रांति चाहते हो तो सारे समाज के परिवर्तन के बिना ये होगा नहीं। और सारे समाज का परिवर्तन मामूली एक्टिविटीज से, मामूली कार्रवाइयों से, साधारण आंदोलन से नहीं होगा, तो एक उसका सिलसिला बनाना होगा। मैं आपको इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि आप स्वर्गीय डॉक्टर लोहिया की एक बात को दोबारा सोच लीजिए। उन्होंने उनके मृत्यु के थोड़े पहले स्वर्गीय राजा जी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने, जैसा उनका लिखने का ढंग था, लिखा था कि वो एक बूढ़ा था जिसके शरीर में बहुत शक्ति थी नहीं, एक जादूगर की तरह एक आंदोलन खड़ा करता था और लोग उसमें शामिल नहीं होते थे, केवल बह जाते थे, डूब जाते थे। मैं मानता हूं गांधी को उन्होंने लिखा था, और मैं हर साल नहीं, साल में 15 बार आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन गांधी के आंदोलनों में लोगों को मत आइए कहना पड़ता था, मेरे आंदोलनों में दूसरा ही कहना पड़ता है कि आइए आइए, कोई नहीं आता है। राजा जी से उन्होंने इसलिए पूछा था कि राजा जी भी गांधी जी के साथ काम करते थे, कि क्या वजह है कि मेरे आंदोलनों में लोग नहीं आते। स्थानीय विषय मैंने लिया, लोगों के अपने कुछ कहा ना कि कॉम्प्रेहेंसिव कुछ ऐसा विषय लेते हैं कि जिसको लेकर आंदोलन हो नहीं पाता, फेल्ट नीड्स वगैरह, कई कई नए शब्द आए हैं उनको लेकर मैंने आंदोलन किया लेकिन आंदोलन नहीं हुआ। तो ये आंदोलन हुआ नहीं। लोहिया जैसे एक बहुत जबरदस्त व्यक्ति, विचारक, उनके करने से भी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये खोजने का विषय है। लगता ऐसा है आंदोलन अपना एकाएक नहीं बनता है, ये कोई साइक्लोन थोड़ा ही है जो आंध्र में आया था, उसके लिए कुछ पूर्व तैयारी की जरूरत होती है। लगता है तीन बातें आवश्यक है। एक तो जैसी समाज में एक सोशल एक्टिविटी चलती है, उस प्रकार की एक्टिविटी आपको चलानी पड़ेगी शिक्षा में क्रांति के लिए। खोजिए इसको, कैसे एक्टिविटी का अर्थ क्या होता है, क्या साइज हो उसका इत्यादि। उसके बाद में, और वो जो कहा गया है सही कहा गया है, बार बार मैं सोचता हूं, आज सुबह एक मित्र से कह रहा था, सेक्रेटेरिएट में गया था, देखा कि टेबल खाली पड़े हैं। बाहर कॉरिडोर में देखा कि जिन लोगों के टेबल खाली पड़े हैं उनकी उम्र तो यूथ की उम्र है। तो मुझे लगा कि ये टेबल अगर यूथ अपना काम छोड़कर भाग जाता है तो क्या यही यूथ क्रांति करेगा? तो जेपी ने ऐसा क्यों कहा होगा? ये दोनों का मेल मैं अपने मन में कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जेपी का ये मानना है कि उस राजा की तरह कि जो जिस चीज को हाथ लगाता था सोना बन जाता था, जेपी ये मानते हैं कि यूथ जिसमें शामिल होगा आंदोलन बन जाएगा। इस एक्टिविटी को अगर मूवमेंट में आपको परिणत करना है तो उसमें यूथ को जाना होगा, और यूथ जाएगा तो एक्टिविटी नहीं रहेगी, मूवमेंट होगी। अगर शिक्षा में क्रांति का मूवमेंट आपको बंबई में चलाना हो तो शिक्षा से संबंधित हर व्यक्ति का उसमें कम से कम जानकारी चाहिए, तब एक विन पैदा होगी। हर विद्यार्थी को माहिती मिलनी चाहिए, शिक्षकों को मिलनी चाहिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं, और जो पालक हैं उनको भी इसमें शामिल कर लेना होगा जानकारी के लेवल पर। और उसका एक मूवमेंट धीमे धीमे, आज शुरू किया 15 दिन बाद दूसरी मीटिंग हुई, ऐसा नहीं दिन भर की मीटिंग चले जैसी वो 22 मार्च वालों के फ्रांस में चलती थी, तब उसका एक मूवमेंट का रूप होगा। और ये होने के बाद में एजिटेशन की स्टेज आती है, उसके पहले नहीं। और एजिटेशन में जो कंसर्न है उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, वो शामिल होंगे, लेकिन सारे समाज को जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद अगर तब तक भी अगर ना हुआ तो फिर आप स्ट्रगल के लिए तैयारी कीजिए, एक लड़ाई के लिए, और उसमें सारे समाज को इन्वॉल्व कीजिए। ये कभी संभव नहीं होगा कि आप एकदम स्ट्रगल का या एजिटेशन का कदम उठाएं और लोग उसमें शामिल होंगे, ये होगा नहीं। उसके पहले आपको एक्टिविटी और मूवमेंट चलानी पड़ेगी। मैं आपसे आह्वान इस बात का करना चाहता था, इसे आप सोचें, और तब जाकर आपको ये दिखाई देगा कि फिर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होगी, इन दो तीन कदमों से ही एक विल पैदा होगी, जिस विल के कारण शिक्षा का ढांचा बदल सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आपकी विद्यार्थी के नाते, यूथ के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरह एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर एक सिटीजन की है या नहीं, और वो अगर है तो आपकी क्या है। रीसेंट पास्ट की बात को मैं अभी लेता हूं, जिसके कारण मैं आज आपके सामने खड़ा हो सकता हूं, आप यहां इकट्ठा हो सकते हैं, 12 महीने पहले ये नहीं हो सकता था। इस स्थिति का परिवर्तन जिन्होंने किया है, और वो आपने मैंने नहीं किया है पूरी मात्रा में, उस आदमी ने किया जो जानता नहीं है, जो कभी बोलता नहीं है, जो कभी सुनता भी नहीं, भूखे पेट से बहुत सुन भी नहीं पाता है, उस आदमी के पास में ये जो सारा हुआ इसका कभी पूरा वर्णन हमने रखा है? क्या ये संभव है बंबई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए कि 100 गांवों का वो प्रोजेक्ट ले? मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि उस गांव की सफाई का क्या होगा सोचिए, उस गांव के खेती का क्या होगा सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा काम कहना चाहता हूं जो दूसरी कोई एजेंसी इस देश में नहीं करने वाली है, नहीं कर रही है। रूरल डेवलपमेंट होगी, करने वाली एजेंसीज है, लेकिन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट होगी या नहीं? और कोई कर रहा है? मैं जहां तक देखता हूं नहीं कर रहा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 100 गांवों में हर एक नागरिक को उस गांव के, ये क्या होता है डेमोक्रेसी जिसे आप कहते हैं, वो बताइए, اور آپ جانتے ہیں اس لیے آپ اسے شیئر کیجئے. یہ نیشنل ریسپانسبلٹی ہے, اور یہ نیشنل ریسپانسبلٹی اگر یوتھ اور ودیارتھی یونیورسٹی اسٹیج کے لیتے ہیں تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ اس دیش میں ایک ڈیموکریٹک ویل بھی پیدا ہوگی. ورنہ اگر یہ نہ ہوگی تو یہ آپ دھیان میں رکھیے کہ ڈیموکریٹک ویل کے ابھاؤ میں ڈیموکریسی بھی اس دیش کی بہت کمزور رہے گی, اور اگر کمزور رہے گی تو کسی دن بھی ٹاپل ہوگی, اور انہیں راجنیتک نیتاؤں کے دوارا دلوں کے دوارا ٹاپل ہوگی جو ایک دوسرے کو ٹاپل کرنے کے گیم میں ہر وقت لگے ہوئے رہتے ہیں, انجانے ہو جائے گا. اس لیے ان دو باتوں کی طرف میں صرف آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا تھا. ایک کہ آخر سٹرگل کے لیے تیاری کرنے ہو تو کس سٹیج سے اور کیسے کی جائے, ٹھیک سے اس کا پلاننگ ہو سکتا ہے کرنا چاہیے, اور دوسرا کوئی ایسا پروجیکٹ جو اس دیش کی دوسری کوئی ایجنسی اٹھانے کے لیے آج تیار نہیں ہے اور نکٹ بھوشیہ میں تیار ہوگی ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے. یہ کام جے پرکاش جی نے جب یہ مانا کہ یوتھ کو یہ ساری ریسپانسبلٹی لینی ہے تب یہ مانا ہے کہ اسے بھی ایک مومنٹ کے طور پر آپ چلائیں گے. 100 کے 10,000 کب ہوں گے اور 10,000 کے لاکھ گاؤں کب ہوں گے پتا بھی نہیں لگے گا, اتنی شکتی یوتھ کے پارٹیسپیشن کی ہوتی ہے. یہ جے پرکاش جی کا انوبھو بھی ہے اور مانیتا بھی ہے. ان دو ہی باتوں کے لیے میں آپ سے پرارتھنا کرنے یہاں اپستھت ہوا ہوں. میں نے سنچالکوں سے کہا تھا کہ دادا جس سبھا میں بولتے ہیں اس سبھا میں زیادہ ویکتوں کے بھاشن نہیں رکھنے چاہیے, اور میرا تو نہیں ہی رکھنا چاہیے کیونکہ جو باتیں دادا کو کرنی ہیں وہ باتیں مجھے سننی ہیں. دھنیہ واد سب کو.
கால
जो बातें अभी आपसे कही गई वो बहुत महत्व की हैं और मैं स्वयं भी उनसे कुछ सीखा हूं। तो मेरा साधारण तरीका यह है कि मुझसे पहले कुछ कहा जाता है उससे आगे की बात मैं कहता हूं। उतनी बात तो कही गई है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। अब हम इस देश में और दुनिया में ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि या तो इस समाज की बुनियादों को बदलना होगा या फिर मानव समाज नष्ट होने वाला है हर क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में आज क्या स्थिति है कि स्वार्थों के संगठन बन गए हैं। ये संगठित स्वार्थ जब इनमें कुछ शक्ति आ जाती है तो ये दबाव के गुट बन जाते हैं, जिन्हें प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। हर प्रेशर ग्रुप अपनी तरफ खींचता है। एक प्रेशर ग्रुप और एक तरफ खींचेगा, दूसरा प्रेशर ग्रुप दूसरी तरफ खींचेगा। इनमें से किसी को पूरे समाज के योगक्षेम का कोई विचार इनके किसी के मन में नहीं है, उनको फिक्र भी नहीं है। अब ये स्थिति आ रही है कि ये बहुत दिन चलने वाला नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह स्वरूप है कि इसमें हर मजदूर मालिक भी होता है। मैं अगर किसी के घर बर्तन मांजता हूं और बाहर निकलता हूं, बोझा मेरे पास ज्यादा है, तो एक कुली को खोजता हूं, तब मैं मालिक बन जाता हूं। कुली से कहता हूं कि तू कम से कम पैसे मुझसे ले। लेकिन जब मैं बर्तन मांजने जाता हूं तो تو میری مزدوری جو خریدتا ہے اس سے کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مجھے دے پیسے. یعنی سائیکولوجیکلی منوورتی کی درشٹی سے پونجی واد میں سبھی مزدور مالکوں کی منوورتی کے ہیں, لیکن پونجی واد کی دوسری ایک بڑی بنیاد ہے, وہ ہے سودا. سودے کا سوروپ یہ ہے کہ وستو لینی ہو تو ادھک سے ادھک لو, اور اس کے دام دینے ہو تو کم سے کم دو. ادھک سے ادھک لینا, کم سے کم دینا, یہ ہے سودے کا سوروپ, اور اسے ہی بازار نیتی کہتے ہیں. پونجی واد میں بازار نیتی مکھیہ ہے. پجاری اگر نوکر ہو, جیسے کہ آج ہیں مندروں میں, تو وہ کیا کرے گا؟ کم سے کم پوجا اور زیادہ سے زیادہ دکشن. یعنی ایشور کی پوجا میں بھی جب سودا آ جائے گا تو پوجا بھی وہ کم سے کم کرے گا. اس کو میں دکشنا دیتا ہوں کہ ایک لگھو رودرا آپ کر دیجئے اور چلا جاتا ہوں, تو وہ لگھو رودرا جتنے کم سمے میں کر سکتا ہے اتنے کم سمے میں کرے گا, کیونکہ دوسرا لگھو رودرا بھی اسے کرنا ہے, اور ادھک سے ادھک کمائی کرے گا. یہ پونجی واد کی نیتی کھادی میں پرویش نہ کرے, یہ اس کا منشا تھا آرمبھ میں. اسی کا نام بازار ہے. کھادی میں بازار نہ آئے, اس کا مطلب یہ تھا کہ سودا کھادی میں نہیں آئے گا. کچھ پرتیک ہیں آج بھی, لیکن وہاں بھی ویاپار گھس گیا ہے. پھر بھی آپ پوسٹ آفس میں جاتے ہیں تو بھاؤ نہیں کرتے. اس کو آپ نے 15 پیسے کے حساب سے 3 روپے دے دیے, وہ 20 کارڈ آپ کو دے دیتا ہے. ریل کا ٹکٹ خریدنے جاتے ہیں تو آپ بھاؤ نہیں کرتے. یعنی کوئی ایک مان دنڈ ہم نے جو پیمانے آج بازار میں پائے, کیا اس سے کوئی الگ پیمانے کھادی میں آئیں گے؟ یہ سوال تھا. نہیں تو اس کا کوئی ستھان ہی نہیں تھا. یہ گاندھی کے رام راجیہ کی پرکریا میں اس کا ستھان تھا. لوگوں کو کام دینا تھا, لیکن کام کس لیے دینا تھا؟ جیسے مندر میں پجاری کو کام تو دینا ہے, لیکن کام کس لیے دینا ہے؟ کہ بھگوان کی بھکتی بڑھے, پوجا ہو. لیکن پجاری کے من میں بازار آ گیا, سودا آ گیا, تو ایک دن آئے گا, اور بہت جلدی آ رہا ہے, جب پجاریوں کی ہڑتال ہوگی. یہ چیز کھادی میں آ گئی ہے. اب تو میڑھک کو بھی زکام ہونے لگا. یہ کیوں آئی؟ کہ کھادی جس ادیش سے شروع ہوئی تھی وہ ادیش آنکھ سے اوجھل ہو گیا, اور کھادی کیول لوگوں کو کام دینے کے لیے ہے, اتنا ہی ہمارے سامنے رہ گیا. کم سے کم میں آج جو کھادی پہنتا ہوں وہ کیول اس لیے پہنتا ہوں کہ کچھ غریبوں کو کام ملتا ہے. اس میں اس سے آگے کوئی سنکیت اس میں اب نہیں رہ گیا. کھادی کی دکانوں پر کسی کا وشواس نہیں رہ گیا جو پہلے تھا. कश्मीर में हम जाते थे तो लोग हमसे कहते थे कि असली केसर चाहिए तो खादी की दुकान में जाओ। दूसरी बार जब गया तो खादी की दुकान के मैनेजर ने कहा कि अब हमारा काम इतना फैल गया है कि हम कोई विश्वास आपको नहीं दे सकते। अब वो विश्वास तेल में भी नहीं दिला सकता, खादी में भी नहीं दिला सकता कि इस खादी में कोई ऐसा मिल का सूत नहीं होगा, इसका भरोसा हमको वो नहीं दिला सकता। यानी खादी में जो विश्वास पात्रता थी वो निकल गई। खादी का व्यापार बढ़ता होगा, वो पहले महायुद्ध में अकबर ने लिखा था, कवि अकबर ने, कि कदम जनवन का बढ़ता है, फतह सरकार की होती। जर्मनी आगे बढ़ता चला जा रहा है लेकिन विजय तो अंग्रेजों की हो रही है। वो हाल आज खादी का है, खादी का व्यापार बढ़ रहा है लेकिन खादी में जो संकेत था वो समाप्त हो रहा है। इसके जो कारण मैं देखता हूं उनको पहले रखूंगा और बाद में खादी की अर्थनीति क्या होगी आपके सामने रखूंगा। वो जैसे भगवान नाम का संकीर्तन मनुष्य करता है और माया ब्रह्म का विवेचन करता है, वैसा आजकल मुझे करना पड़ता है, लेकिन इसकी आज आवश्यकता है। अगर यह नहीं होगा तो अब कहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्त्रियों की सभा में मैंने कहा था कि स्त्री अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि या तो वो पुरुष से आगे बढ़ेगी बराबरी पर नहीं, या फिर से चूल्हा चक्की की तरफ वापस जाएगी। इस मुकाम पर अब वो पहुंच गई है। ऐसे ही इस मुकाम पर अब हमारी अर्थनीति पहुंच गई है कि खादी या तो दूसरे कपड़े जैसी हो जाएगी या फिर उसको अब अपने सारे मूल्य बदलने होंगे। आज जो खादी का व्यापार हो रहा है इसमें तीन तरह के लोग हैं। कुछ तो हैं जो व्यवस्थापक हैं, दूसरे बाबू लोग हैं और तीसरे काटने वाले हैं। इनमें जागृत हैं और थोड़ी बहुत शक्ति है समाज को परेशान करने की, वो बाबू लोगों में है। उन लोगों में है ही नहीं जो खादी का सूत पैदा करते हैं। असल में अधिक से अधिक लाभ उनका होना चाहिए लेकिन उनके लाभ की किसी को चिंता बहुत है नहीं। उल्टे मैंने यह देखा है कि उनको भी खादी के वजन के मामले में, सूत के नंबर के मामले में बाबू धोखा देता है। यानी जो दूसरे दफ्तरों में और दुकानों में होता है वो जो बिचौनिया है मिडिल मैन, ये खादी की दुकानों में भी है। अब इन सब के स्वार्थ अलग अलग हैं। यहाँ के एम्पोरियम में ही नहीं, सब जगह की खादी भंडारों में अनेक जगह मैंने ये देखा है कि वो जो कार्यकर्ता आते हैं वो दुकान में सिर्फ खादी की पोशाक पहनते हैं और दुकान से बाहर आते ही दूसरी पोशाक बदल लेते हैं। इसका मतलब ये है ना कि वो आया था इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए। बेकारी बहुत है इस देश में, तो नास्तिक भी मंदिर में पुजारी बन जाता है, क्योंकि उसको और कहीं जगह नहीं है उसके लिए। तो मंदिर में जाकर पुजारी बन जाएगा। अब ऐसे बाबुओं की ये खादी बनी हुई है, इसलिए इसमें ट्रेड यूनियनिज्म आ गया, और ट्रेड यूनियनिज्म को किसी चीज से परहेज नहीं। उसको सिर्फ अपने यूनियनिज्म से ही मतलब है। ट्रेड यूनियनिज्म इज ऑलवेज वन स्टेप बिहाइंड रिवोल्यूशन। क्रांति ट्रेड यूनियनिज्म से कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो काम के घंटे कम करो दाम बढ़ाओ, सौदे का ये सूत्र ही है, कम से कम काम ज्यादा से ज्यादा दाम। और जो मैनेजर्स हैं वो क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम दाम। अब दोनों के मन में, मैंने एक भाषण में कहा था कि दोनों चोर हो गए हैं, एक दाम चोर दूसरा काम चोर। इनमें से साहू कोई नहीं रह गया है। यह मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, कितना बड़ा सांस्कृतिक ह्रास है इसको आप समझिए। वो समझते हैं कि इसमें एक दूसरे का नुकसान है। मित्रों, एक दूसरे का नुकसान नहीं है, दोनों का बहुत बड़ी हानि है, और वो सांस्कृतिक हानि है, मनुष्यता की हानि है। इस चीज को कभी समझ नहीं लिया गया। खादी को जो भूमिका भिन्न होनी चाहिए थी वो हो नहीं सकी। इसका कारण जो मोहताज थे, बेकार थे, वो यहां आए, और जो मैनेजर्स हैं उनके अपने अलग अलग रोजगार हैं। जब तक केवल खादी सांकेतिक थी तब तक घनश्याम दास बिरला भी काटता था, इसमें महत्व था। लेकिन अब केवल सांकेतिक नहीं रह सकती है, वो अर्थ रचना का प्रतीक होगी। तो जिसकी अपनी कपड़े की दुकान अलग चल रही है, वो केवल सूत काटता और खादी पहनता है, इतने से खादी के नाम पर वो प्रतिष्ठित हो, ये भयानक अवस्था है। मैंने सुनाया था यहां मुंबई में 1921 में मैं आया कॉलेज छोड़कर, तो मेरा मित्र एक विल्सन कॉलेज में पढ़ता था, वो साथ हम लोग निकले घूमने चौपाटी पर, तो एक अड्डे पर एक आदमी शराब पी रहा था, खादी पहने हुए था। वो मेरा मित्र कहने लगा, देख तेरे खादी वालों से तो हम अच्छे हैं कि नहीं, ये तो खादी वाला शराब पी रहा है, हम कम से कम खादी वाले नहीं है तो शराब तो नहीं पीते हैं, इससे तो अच्छे हैं। मैं कहा, इतनी बात में तो तू अच्छा है कि तू शराब नहीं पी रहा है, लेकिन ये खादी वाला शराब नहीं पी रहा है, यह शराबी खादी वाला बन गया। शराब तो पहले से ही पी रहा था, लेकिन खादी अब क्यों पहनने लगा है, खादी में प्रतिष्ठा है। आज नौबत ये आ गई है कि जो खादी पहनता है वो धोखा धड़ी वाला समझा जाता है। गांधी के जमाने में खादी आजादी की वर्दी थी, खादी वाले को देखते ही पुलिस वाला चौकन्ना हो जाता था। आज उल्टी हालत हो गई है, अगर मालूम न हो कि यह कौन है तो लोग समझते हैं कि यह मिनिस्टर होगा, और मिनिस्टर होगा से मतलब 420 हो। खादी से यहां तक खादी क्यों आई, किसके कारण आई, खादी के मैनेजरों के कारण आई, खादी के बाबुओं के कारण आई, इन दोनों के कारण आई, और ये दोनों अगर इसमें अपनी जिम्मेवारी नहीं मानते हैं तो समाज को धोखा देते हैं। इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। पेट तो सबको है, लेकिन पेट के साथ साथ चारित्र भी है कि नहीं। परिवार की स्त्री मेरी मां भूखों मरेगी, लेकिन वेश्या का व्यवसाय तो नहीं करेगी। जब खादी का मैनेजर यह कहता है कि हमारे पास पैसे की कमी है, तो उसके जीवन में कोई अंतर नहीं आता। जो एम्प्लॉई है उसके जीवन में अंतर पड़ता है। तो उसमें एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप आ गई। मालिक और नौकर, मालिक और मजदूर का जो संबंध था वो खादी में भी आ गया, जो नहीं आना चाहिए था। यहां तो सभी मालिक सभी मजदूर, जितने मालिक उतने मजदूर। वो भूदान के जमाने में मैं एक कहानी सुनाया करता था कि एक राजा के 5 रानियां थी। बहुत संपन्न अब राजा ही था वो, उनके लिए उसने चांदी के झूले बनवा दिए, उसमें रेशम की रस्सियां लगा दी झूला झुलाने के लिए। लेकिन नौकरों से कहा कि झूला कोई झुलाना नहीं इनको। जब रानियां बैठ गई बंठन कर अपने अपने झूले में, सवाल यह हुआ कि झुलाए कौन। तो थोड़ी देर के लिए रुकी, बाद में तय किया कि हम एक दूसरे को झुलाएंगे। तो जितनी रानियां उतनी नौकरानियां, जितनी नौकरानियां उतनी रानियां, सभी रानियां सभी नौकरानियां। यह खादी के अर्थशास्त्र का प्रतीक है। इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी रिलेशनशिप नहीं रहेगी, लेकिन बाबुओं ने यह अपने तक ही माना है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि सारे बाबुओं से कहा गया कि ठीक है ये खादी तुम संभालो, अब हमसे नहीं संभलती। तो क्या ये बाबू सारे उन कत्तिनों को शामिल करेंगे कि वो एम्प्लॉई रह जाएंगे? जो काटने वाला है वो मजदूर ही रहेगा। आज का जो बाबू है व्हाइट कॉलर, वो मालिक बनेगा, और ये मालिक उतना ही शोषण करेंगे जितना दूसरे दुकानदार कर रहे हैं। खादी में से मनुष्य की रिलेशनशिप बदले, ये सपना है। और क्या सपना है? कोई मालिक नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई तनख्वाह पाने वाला नहीं, कोई तनख्वाह देने वाला नहीं। ये हिम्मत मैं तो कारखानेदारों से भी कहता हूं जब ट्रस्टीशिप की बात करता हूं, लेकिन यहां तो खादी में ट्रस्टीशिप तो दूर रही, ऑनेस्ट कॉमर्स भी नहीं, ईमानदारी का व्यापार भी नहीं रह गया है। इसका कारण हर एक की स्प्लिट पर्सनैलिटी है। पूंजीवादी मूल्य चाहता है और रोजगार खादी का करता है, जिसमें समाज परिवर्तन का संकेत था। खादी में मुख्य संकेत ही यह था कि समाज की अर्थ नीति बदले। यह संकेत अब खादी में नहीं रह गया। दूसरा संकेत था अर्थनीति बदलेगी का अर्थ क्या है। میں آخر کی بات کہہ رہا ہوں. ساری کرانتی کے ارتھ شاستر کی آخری چیز کیا ہے؟ کام کا دام کے ساتھ سمبندھ نہیں. کام کا سمبندھ ہے اتپادن کے ساتھ, اور منشیہ کی آوشیکتا کا سمبندھ ہے اپبھوگ کے ساتھ. یہ سماجواد ہے یا کمیونزم ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن یہ ٹریڈ یونینزم نہیں. کام کا سمبندھ دام کے ساتھ نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے کلپنا کیجئے, جیسا آج ہو رہا ہے بہت سے میرے پریوار کے نزدیک کے لوگوں میں, کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے اور اس کے اپچار کا خرچ 1,00,000 روپے آتا ہے. اب وہ تو اپچار کے بنا مرے گا ہی, وہ دوسرا اس کے لیے چارہ کیا ہے؟ تو یہ تو دام ہوئے نا, اپچار کے بھی دام ہو گئے. یعنی جو دوا خرید نہیں سکتا, اس کو مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ جو وترن پرچیزنگ پاور بیسس ہے, جتنی آپ کی کرے شکتی ہوگی اتنا آپ کو اپبھوگ ملے گا, آسوری ارتھ نیتی ہے. میں جتنا کام کر سکتا ہوں اتنا کام کروں گا, ایمان سے کروں گا, لیکن میری بیماری اگر ایسی ہے کہ اس کو مہنگی دوا کی ضرورت ہے تو میرا ادھیکار ہے, وہ مجھے ملنی چاہیے. یہ انتم چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اب تک کمیونسٹ دیش بھی یہاں تک نہیں پہنچے ہیں, اور ہماری سرودے کی سنستھائیں تو بہت ہی پیچھے ہیں, لیکن انتم چیز یہ ہے کہ جتنی اس کی آوشیکتا ہے اتنا اپبھوگ اس کو ملنا چاہیے, اور جتنی اس کی طاقت ہے اتنا وہ کام کرے. کیا اس طرف کو کھادی کا منہ ہے؟ کھادی اس طرف کو کیا مخاطب ہو رہی ہے؟ قیمت کی طرف سے مولیہ کی طرف ہم کو جانا ہے. اس میں سب کے سہیوگ کی آوشیکتا ہے. کھادی دھاری بھی اس مولیہ کو سمجھے. وہ کھادی پہنتا ہے, اس کا اس کے جیون پر بھی تو کوئی پرنام چاہیے. یہ صرف بڑے پیمانے پر اتپادن ہو یا چھوٹے پیمانے پر اتپادن ہو, اتنا سوال نہیں. اس میں مکھیہ پرشن یہ ہے کہ اتپادن اپبھوگ کے لیے ہی نہیں منشیہ کے لیے ہوگا, اور منشیہ کے لیے سے مطلب یہ ہے کہ وترن میں پرچیز نہیں, پرچیز کی بھاونا نہیں, پرچیز کی شرط نہیں. جو جتنا خرید سکے گا اتنا اس کو ملے گا, یہ غلط چیز ہے. یہ ارتھ شاستر آج چل رہا ہے, وہ کھادی میں نہیں آیا. تو باپو نے جب یہ ودھایک سنستھائیں بنائی, کس لیے بنائی؟ کمارپا نے اس پر نوٹ لکھی تھی, اور وہ نوٹ سرودے کے سمیلن میں آنے والی تھی, لیکن اس کے ایک روز پہلے ہی باپو کو گولی مار دی گئی, تو وہ نہیں رہے. لیکن اس میں وہ کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ آگے آنے والے سماج کا سوروپ کیا ہوگا. یہ کہاں دیکھو؟ تو میری رچناتمک سنستھاؤں کو دیکھو. دھرتی آسمان کی طرف کتنی اونچی اٹھ سکتی ہے, کس کو دیکھو؟ ایوریسٹ کو دیکھو, ہمالیہ کی ایوریسٹ چوٹی کو دیکھو, तो पता चल जाएगा कि आसमान की तरफ धरती कितने उठ सकती है। मेरे राम राज्य का रूप किस प्रकार का होगा, कुछ इसकी झांकी हम कहीं देख सकते हैं तो मेरी विधायक संस्थाओं को दे। आज हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे राम राज्य का स्वरूप कैसा नहीं होगा, तो मैं कहूंगा बापू की विधायक संस्थाओं को देखो, जहां काम में ईमान नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, आपस में विश्वास नहीं है, ऐसी संस्थाएं अगर देखनी है तो गांधी की संस्थाएं देखो, ये आज उनका रूप हो गया है। आज तो स्टैंडर्ड क्या समझा जाता है कि हमारे दफ्तरों में उतनी ही एफिशिएंसी है जितनी सरकार के दफ्तर में, जहां एफिशिएंसी शून्य है। आज थर्मामीटर सरकार है, पहले सरकार नहीं हमारी रचनात्मक संस्थाएं थी, लेकिन अब तो थर्मामीटर कोई टेम्परेचर रहने लगा, तो कोई नाप नहीं रह गया है, कोई पैमाना नहीं रह गया है। यह दूसरी चीज थी खादी के संस्थाओं में। खादी की संस्थाओं से मेरा मतलब है सारी विधायक संस्थाएं, उसमें खादी मुख्य है। तीसरी चीज यह थी कि इसमें सुपरविजन की आवश्यकता नहीं है, कोई काम करता है या नहीं इसके लिए इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी, अगर जरूरत रहेगी तो इसकी रहेगी कि भाई जरा इतना काम मत कर, कुछ कम कर। यह कहने वालों की जरूरत रहेगी, निगरानी की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे हमारे देश का मजदूर होता है, मेरे मकान पर अगर मजदूर काम कर रहा है तो लगातार निगरानी रखनी पड़ती है, नहीं तो दिन में 50 बार तम्बाकू ही पीने जाता है। तो जैसे दूसरे दफ्तरों में लंच आवर होता है, उसमें और हमारी खादी संस्थाओं के लंच आवर में कोई फर्क नहीं। लंच आवर जितना बड़ा हो उतना अच्छा ही है, और काम पर आते हुए घड़ी कुछ पीछे हो और जाते वक्त कुछ आगे हो तो अच्छा ही है। ये सिर्फ कर्तव्य निष्ठा ही नहीं है, इतना नहीं है, रुचि नहीं है काम जरा, इंटरेस्ट नहीं है, और जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है उस काम का नाम बेगार है। मजदूरी उस काम का नाम है जो अपना काम नहीं है, पैसे के लिए जो काम किया जाता है उसमें स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है। स्कूल मास्टर ट्यूशन के लिए आता है तो जिस लड़के को ट्यूशन देना है उसको कम से कम समय में ट्यूशन देकर चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन की फीस लेगा, लेकिन अपने बेटे को अगर पढ़ाना है तो कोई हड़ताल होगी। जो तनख्वाह के लिए पढ़ाता है वो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि वो दूसरे का काम है। जो अपने ही बेटे को पढ़ाता है वो स्ट्राइक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अपना काम है। तो ये गोविंद राव ने कहा ना कि ये किसी का अपना काम नहीं है, उसकी कसौटी यह है, जिस काम में स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है, वो काम अपना नहीं है, दूसरे का है। वो पैसे के लिए काम करते हैं, दान के लिए काम करते हैं। इससे, इस धरातल से, इस स्तर से खादी को उठाना होगा, नहीं तो यह समस्या अब हल होने वाली नहीं। इसके बाद एक चीज और है, हमारे देश में आज जो क्राइसिस है जिसे संकट कहते हैं, परिस्थिति में वो संकट है परस्पर ईमान का, विश्वास का संकट है। विनोबा ने हमको, वो ऋषि है आज विनोबा, इसलिए एक एक शब्द में बहुत से संकेत मंत्र हमको दे देता है। तो उसने वेदांत, विज्ञान और विश्वास, तीन हमको शब्द दे दिए, वॉचवर्ड्स जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में, सांकेतिक शब्द। हमारी किसी संस्था में अब परस्पर विश्वास नहीं रह गया है, एक दूसरे का भरोसा नहीं। नतीजा यह है कि हड़तालें भी होती हैं तो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, अपनी मर्जी से नहीं होती, लोगों को काम पर जाने से रोकना पड़ता है, टिकटिंग ही नहीं पीटना भी पड़ता है, उनको डराना पड़ता है, एक आतंक का वातावरण पैदा करना पड़ता है जिससे वो काम पर न जा सके। तो मजदूरों में, काम करने वालों में भी आपस में विश्वास नहीं, मजदूर मालिक में आपस में विश्वास नहीं, मालिक मालिक में आपस में विश्वास नहीं, तो कैसे कोई काम आगे बढ़ सकता है। ये पूरे देश के लिए आप सोचिए, केवल अपने लिए नहीं, केवल खादी के लिए नहीं। मित्रों, ये कुछ संकेत थे जो संकेत बापू के मन में थे, इसलिए बापू ने इन संस्थाओं को क्रांति की प्रक्रिया के प्रतीक माने थे। बापू की विधायक क्रांति के साधन ये सारी संस्थाएं थी, जितनी संस्थाएं उन्होंने कायम की, और शुरू कहां से किया वो भी आप देखिए। पुनः संस्करण जब कराया तब ये कहा कि कम से कम चार आने वेतन मिलना चाहिए, वो उस जमाने की बात है जब चार आने की कुछ कीमत थी। लोगों ने कहा खादी महंगी होगी, तो बापू ने कहा कि जो काटता है उसको भूखा रखकर मुझे खादी सस्ती नहीं करनी। ये इसलिए कह सके वो कि वो स्वयं तो मजदूरी नहीं करते थे, खादी खरीदते भी नहीं थे, काटते थे। आज क्या होगा, काटने वाले को अगर ज्यादा मजदूरी आप देंगे तो खादी महंगी होगी, कम बिकेगी, कम बिकेगी तो बाबू लोगों की तनख्वाहें कम होंगी। इसलिए आवश्यक यह होगा कि खादी को सस्ता बेचने के लिए या तो सरकार से सहायता लो या फिर मुनाफाखोरी करो, एक्सप्लॉइट करो कंज्यूमर को। इस नीति के सिवा अब ये काम चलेगा नहीं। तो इसका नाम बापू ने अंत्योदय रखा था। अंत्योदय से मतलब ऊपर वाले की तरफ मत देखो, नीचे वाले की तरफ देखो। हर आदमी ऊपर वाले को अपने स्तर पर लाना चाहता है लेकिन नीचे वाले को अपने स्तर पर नहीं लाना चाहता। नीचे वाले को मेरे स्तर पर लाना है ये विचार किसी के मन में नहीं, इसलिए यह सारा झगड़ा होता है। हर एक अपने से ऊंचे वाले को देखता है, ऊंचे वाले तो मुट्ठी भरे ही रहते हैं, ऊंचे वाले थोड़े नहीं रहेंगे तो वो ऊंचे ही नहीं हो सकते, वो ऊंचे हो ही नहीं सकेंगे। बिरला टाटा अगर सारे मुंबई शहर में फैल जाएंगे तो बिरला टाटा रहेंगे ही नहीं। तो यह है तो आरोहण, ऊपर को जाना है, लेकिन ऊपर को जाने में नीचे वाले को साथ लेकर जाना है, ये विचार आना चाहिए। ये विचार बापू की रचनात्मक संस्थाओं में था। मित्रों, ये कुछ बुनियादी विचार हैं जिन विचारों का प्रतीक खादी थी, वो आज नहीं रह गई है। फिर भी खादी पहनने में मुझे दिलचस्पी है, और वो इसलिए है कि आज भी खादी इतने गरीबों को काम दे रही है। उनका शोषण होता है फिर भी काम इतने गरीबों को दे रही है, और दूसरों की अपेक्षा शोषण कम है। अब इसकी बेसिस को, इसकी बुनियादों को नहीं बदलेंगे तो खादी नहीं चलने वाली है। एक दिशा विनोबा ने, बापू ने अब बतलाई, जिसका उल्लेख गोविंद राव ने किया है कि वस्त्र स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपको बीच की बात बता रहा हूं, और बीच की बात यह बता रहा हूं कि इसमें से रिलेशनशिप बदलनी चाहिए। मालिक मजदूर, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिश्ता खादी में नहीं रहना चाहिए। जितनी खादी व्यापारी खादी है उसमें कम से कम यह हो जाना चाहिए, और जो कतैया है, काटने वाला है, उसका भी स्थान आपके साथ होना चाहिए। कम से कम खादी की संस्थाएं तो करें, तो कारखानेदारों से हम कह सकेंगे ट्रस्टीशिप क्या है खादी को, देखो। आज वो हमसे पूछता है कि ट्रस्टीशिप कहां देखें, हम कहते हैं भाई तुम ही करो, कम से कम खादी को मत देखो, क्योंकि उसकी तरफ हम इशारा करेंगे, उंगली दिखाएंगे तो तुम कहोगे कि तुम्हारा नहीं कर सका है, खादी वाला नहीं कर सका है, तुम हमसे क्या कह रहे हो। तो ये सबसे पहली चीज आज मैं कहता हूं जिसकी तरफ हमको कदम बढ़ाना चाहिए। आज होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सबसे यह कहा है, विद्यार्थियों से यह कहा कि यूनिवर्सिटी तुमको सौंप देनी चाहिए। ये फिजूल खर्ची करेंगे, सब काम बिगाड़ देंगे। आज कौन सा सुधरा हुआ है? आज फिजूल खर्ची कौन सी नहीं? जितना हमने बिगाड़ा है इससे ज्यादा हमारे बेटे बेटियां नहीं बिगाड़ने वाली है, उनमें शक्ति नहीं है। इसलिए मैंने यह कहा है कि यूनिवर्सिटी इनको सौंप दो, इन लड़कों को, तब इनको इनके होश ठिकाने आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। जब यही पैसा लाने वाले होंगे और यही तनख्वाह पाने वाले होंगे तब उनकी समझ में आएगा, तब ट्रेड यूनियनिज्म का अंत हो जाएगा, तब हड़तालें बंद हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन के हड़ताल का मतलब होगा उतनी आमदनी कम। इस रिलेशनशिप का हमारी संस्थाओं में से अंत हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए, जो लगातार कम हो रही। खादी संस्थाओं का विश्वास कम हो रहा है, यह क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए। तीसरी चीज, काम में इंस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ चौथी चीज भी है जो मैं कह रहा हूं, ऑडिट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां तो किसी खादी संस्था का और किसी विधायक संस्था के हिसाबों का ही ठिकाना है। जितना कर्जा लिया गया है वो कहां गया इसका भी पता नहीं। तो ये तो इलेक्शन में जो होता है वो ही खादी में होता है, वो सब जगह होता है। ऑडिट की जरूरत क्यों है कि हिसाब सही रखा गया है कि नहीं, इसी के लिए है ना। तो हिसाब का शास्त्र जो सीख लेता है वो इतना होशियार होता है कि ऑडिटर को चकमा दे सकता है। उसमें से कोई ऑनेस्टी नहीं बढ़ी है ऑडिट में। और पांचवी चीज मैं आप लोगों से निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप जो काटने वाला है उसको अधिक से अधिक दें और इस कोशिश में रहें कि खादी खरीदने वाले को सस्ती से सस्ती मिले। दूसरे कपड़े से महंगी होगी मैं जानता हूं, लेकिन जितनी सस्ती उसको दी जा सकती है ये आपका इंटरेस्ट हो, इसमें आपको अपना पेट काटना पड़े ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपको अपना विलास काटना पड़े, जिसे लक्जरी कहते हैं वो काटनी पड़े, तो उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए। मैं ऑस्टेरिटी की बात नहीं कह रहा हूं, आवश्यकताएं आपकी पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड हो गया है लाइफ का, जिस स्टैंडर्ड को मैं गलत स्टैंडर्ड मानता हूं, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन इसका नाम है इकोनॉमिक्स में। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब आपके पास कितनी मोटरें हैं, तीन मोटरें हैं। तीन मोटरें किस लिए रखते हैं, सीट कितनी है आपकी, तो एक ही सीट है। एक वक्त एक मोटर की एक ही सीट पर बैठता हूं, फिर तीन तीन मोटरें क्यों रखते हैं, शान के लिए रखते हैं। आपके घर में कितनी कुर्सियां, 50 कुर्सियां हैं, इनमें से खाली कितनी रहती हैं, 45। कितने कमरे हैं, 10 कमरे हैं। इन ये किस काम के हैं, मैं सवेरे एक कमरे में बैठता हूं, दोपहर में दूसरे में बैठता हूं, तीसरे में अध्ययन के लिए तीसरे में बैठता हूं, पूजा के लिए चौथे में बैठता हूं, और फिर एक कमरा रह जाता है तो बैठने के लिए वक्त ही नहीं रहता। ये कॉन्स्टिट्यूस कंजम्पशन कहलाता है। ये हम समाज में कहीं नहीं रहने देना चाहते, लेकिन इसका अगर अंत करना है तो जिन संस्थाओं को हम प्रतीक के रूप में रखना चाहते हैं उन संस्थाओं में तो यह नहीं होना चाहिए। पूरा भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा कपड़ा मिले, सवारी में बैठने की सहूलियत हो, शिक्षण मिले, उपचार मिले, ये सब आवश्यक है। लेकिन ये सारे देश में मिले सबको, इसके लिए कुछ करना होगा ना, सबको मिलकर। आज हम कहते हैं कि तुम दो, तो उसका उपाय मैंने सुझाया कि हम देने वाले और वो लेने वाला, ये रिश्ता समाप्त होना चाहिए। भाई तू ही लेने वाला, तू ही देने वाला, ये एसेट्स हैं, इतनी संपत्ति है। अब इसमें से जो